हाई इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज के इस इंडस्ट्री एनालिसिस में वील बी स्टडिंग एन इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री इट सेल्फ कुड बी द नेक्स्ट मेगा ट्रेंड, क्योंकि ये एक मेगा ट्रेंड ऐसा है जो हमारी सबकी लाइफ में कॉमन है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करते हैं आप सुबह सो के उठते हैं एंड सो के उठने के बाद आप वॉशरूम में जाकर टूथब्रश यूज़ करते हैं एंड टूथब्रश के साथ साथ काफ़ी जो वाटर है उसको भी यूज़ करते हैं, देन आप वॉशरूम को यूज़ करते हैं एंड देन यू कम आउट ऑफ इट। इसके बाद आप क्या करते हैं, आप प्लास्टिक पाउच में से जाके आप प्लास्टिक बैग में से ब्रेड निकालते हैं एंड देन आप अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, राइट। एंड ब्रेकफास्ट खाने के बाद आप ऑफिस की तरफ जाते हैं एंड जब आप ऑफिस के रास्ते में होते हैं तो जिस गाड़ी में आप ऑफिस जा रहे हैं तो उस कार का जो बैटरी है वो ख़राब हो जाती है। देन आपको पता लगता है कि जो आपकी लेड एसिड बैटरी है इसके अंदर एक साइड या एम्बर ऑन की, उसकी लाइफ अभी ख़त्म हो चुकी है, तो आपको बैटरी को रिप्लेस कराना पड़ेगा। फिर आप ऑफिस पहुँचते हैं, ऑफिस में आप अपने लैपटॉप और मोबाइल है उस पर काम करते हैं एंड आप डिस्कवर करते हैं कि आपको मोबाइल ख़राब हो गए एंड आप उसको किसी सेकेंड हैंड पार्टी को आप उसको सेल ऑफ कर देते हैं किसी शोरूम में जाके। देन आप जब वापस घर आते हैं तो घर आके भी आप खाना खाते हैं, टिश्यूज़ यूज़ करते हैं, आपके घर पे लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं मॉर्निंग के अंदर। तो इन सारे इवेंट्स के अंदर अगर आप सोचेंगे तो व्हाट इज़ कॉमन, वन थिंग दैट इज़ ऑलवेज कॉमन इन ऑल दीज इवेंट्स, चाहे ह्यूमन लाइफ का या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर लें, दैट इज़ जनरेशन ऑफ वेस्ट। कि वेस्ट जनरेशन इज़ समथिंग दैट हैपन्स थ्रू आउट द डे, चाहे वो घर के अंदर बेसिकली जो आपके ब्लैक कलर के बैग्स होते हैं उनके अंदर जो भी घर का जो गार्बेज है वो कलेक्ट हो, या फिर अगर आप फ़ोन किसी सेकेंड या थर्ड हैंड किसी को बेच रहे हैं एंड उसके बाद वो फ़ोन को डिस्पोज ऑफ कर दें उसमें से पार्ट्स निकाल के, या अगर आप एग्जांपल लें कि आप सुबह उठ के जैसे आप लाइक वाटर यूज़ करते हैं तो जो वेस्ट वाटर है वो भी जनरेट होता है। सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ जनरेशन ऑफ वेस्ट, एंड जनरेशन ऑफ वेस्ट तो लाइक जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनका एक बाय प्रोडक्ट है। सिमिलरली कोई भी आप अगर प्लास्टिक बैग यूज़ कर रहे हैं या फिर आप चिप्स खा रहे हैं अगर प्लास्टिक बैग के अंदर है, राइट, या आप प्लास्टिक पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई बॉटल से पेप्सी या फिर स्टिंग पी रहे हैं, राइट, तो उसके बाद भी जो बॉटल है दैट विल गेट जनरेटेड एज वेस्ट। सो यहाँ पे वेस्ट जनरेशन इज समथिंग दैट कीप्स हैपनिंग।
अगर हम तय करें, 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा न गंदगी करने दूंगा, अगर गंदगी से देश को मुक्ति के दिलानी है तो फिर हमें तय करना होगा हम गंदगी नहीं करेंगे।
एंड इसी ट्रेंड को देखते हुए एक नया इकोनॉमी में ट्रेंड आया, डेट इज ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। तो पहले जो कंजम्पशन का मेथड था डेट वॉज ऑफ लीनियर कंजम्पशन। क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं यू टेक देम, यू मेक देम एंड यू डिस्पोज देम, राइट, लैंडफिल्स के अंदर यूजली डिस्पोज कर देते हैं। अब क्या आ रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी का ट्रेंड आ रहा है। एंड सर्कुलर इकोनॉमी का क्या मतलब है कि आप रॉ मटेरियल्स देते हैं, उनकी सस्टेनेबल डिज़ाइन होता है, फिर उनका प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजम्पशन, रीयूज और रिपेयर होता है, कलेक्शन होता है एंड वेस्ट मैनेजमेंट होता है एंड साथ साथ रिसाइकिलिंग होती है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि वट एवर यू टेक बेसिकली जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं दैट बेसिकली गेट्स डिस्पोज ऑफ इन एन इकोलॉजिकली फ्रेंडली वे, या फिर उसकी रिसाइकिलिंग हो जाती है। So this is the trend of circular economy, which is one of the mega trends that is happening. So why are we studying this industry? So one of the interesting insights is ki agar hum recycling, waste management ya circular economy ki baat karte hain, to US ke andar kafi saalon se kafi sare waste management stocks listed hain. And kafi baar humne ye dekha hai ki jo bahar trends hote hain eventually India ke andar bhi hote hain. To US mein aap dekhenge there is a company by the name of Waste Connections that is listed. So this company has almost been a 58 bagger in last 20-25 years. सिमिलरली रिपब्लिक सर्विसेज का एग्जाम्पल लेते हैं तो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर इट हैज कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ मोर देन 20%। क्लीन हार्बर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, सिमिलरली इट हैज बीन मोर देन अ 40 बैगर, राइट, एंड लास्ट 5 ईयर्स में इट हैज कंपाउंडेड रियली वेल। एंड फाइनली अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं सो लास्ट 5 ईयर्स में इट हैज रियली कंपाउंडेड वेल एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज बीन ऑलमोस्ट अ 40 बैगर। सो दिस इज वन ऑफ द इंडस्ट्रीज जहाँ पे डिफेंसिबिलिटी बहुत है, बिकॉज अगर आप जनरेशन वाइज टनेजेस देखेंगे तो अगर आप एग्जांपल लेते हैं ग्लास का तो यू सी कि ग्लास का जो जनरेशन टनेज है माने कितना ग्लास वर्ल्ड के अंदर प्रोड्यूस हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते जा रहे हैं। सिमिलरली पेपर एंड पेपर बोर्ड का एग्जांपल लेंगे वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वर्ल्ड में बढ़ते जा रहे हैं, फूड भी बढ़ते जा रहे हैं, मेटल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, इनऑर्गेनिक वेस्ट भी बढ़ रही है, प्लास्टिक्स भी बढ़ रहे हैं, रबर एंड लेदर है वो भी बढ़ रहे हैं, टेक्सटाइल्स भी बढ़ रहे हैं, वुड भी बढ़ रही है, जो यार्ड ट्रिमिंग्स है वो भी बढ़ रही है एंड जो अदर फॉर्म्स ऑफ मेटल्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। एंड सिमिलरली वाई आर वी स्टडिंग दिस इंडस्ट्री, बिकॉज टोटल म्यूनसिपल सीवेज जनरेशन अगर आप टन्स में देखते हैं तो इट हैज़ गॉन अप फ्रॉम 88.1 मिलियन टन टू ऑलमोस्ट 258.5 मिलियन टन्स। सो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट इज बींग जनरेटेड एंड इट इज़ बाउंड टू गो अप। वाई इज इट बाउंड टू गो अप, बिकॉज एज एंड वेन वी कीप प्रोड्यूसिंग मोर और वेन वी कीप कंज्यूमिंग मोर, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ट्रेंड चल रहा है कि रूरल पॉपुलेशन इज मूविंग टू अर्बन पॉपुलेशन, तो अर्बन एरियाज में एक चीज जो बहुत कॉमन है इंडिया की मेजर सिटीज में, दैट इज जनरेशन ऑफ वेस्ट एंड पोल्यूशन, राइट? चाहे आप मुंबई की बात करें, चाहे आप दिल्ली की बात करें, चाहे आप बैंगलोर की बात करें, देर आर ऑलवेज प्लेसेज विद इन द सिटीज विच आर एक्सट्रीमली पोल्यूटेड, राइट? सो वेस्ट जनरेशन इज समथिंग दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. तो यहाँ पे तीन तरीके के बिजनेसेस आते हैं इन सबसे डील करने के लिए. दैट इज देर आर कंपनीज विच डील इन टू वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है या वेस्ट को कलेक्ट कैसे करना है. देन देर आर कंपनीज विच स्पेशलाइज इन टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल. जैसे आपको दिखेंगी कुछ कंपनीज होएंगी जो प्लास्टिक की वेस्ट मैनेजमेंट कर रही होंगी, फिर कुछ कंपनीज होएंगी जो मेटल्स की वेस्ट मैनेजमेंट कर रही होंगी, या तो एलुमिनियम की रिसाइकलिंग कर रही होंगी, या तो साथ साथ जो लेड है उसकी रिसाइकलिंग कर रही होंगी. एंड फाइनली यू विल फाइंड कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन टू ई वेस्ट मैनेजमेंट, राइट? की जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसकी जो मैनेजमेंट है उसके अंदर ऑपरेट कर रहे हैं. देन देर आर कंपनीज विच आर इन टू वाटर रिसाइकलिंग. तो कुछ कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं या फिर ऐसे इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं जो वाटर रिसाइकलिंग के अंदर काम आते हैं. सो दिस इज हाउ द इंटायर इंडस्ट्री ऑपरेट्स, लाइक ऊपर से अगर हम देखें. तो अगर हम डिफरेंट मटीरियल्स देखते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, लेड हो या एलुमिनियम हो, तो यहाँ पे डिफरेंट मटीरियल्स का अगर हम इंडस्ट्री को मैप आउट करते हैं, सो वी विल गेट टू नो कि अगर हम प्लास्टिक वेस्ट को देखेंगे तो पोटेंशियल साइज ऑफ द मार्केट यहाँ पे ह्यूज है, राइट? पॉल्यूशन रिस्क भी बहुत होता है प्लास्टिक से. सिमिलरली जब हम ई वेस्ट को देखते हैं तो ई वेस्ट में भी जो पोटेंशियल साइज ऑफ द मार्केट है वो एकदम बहुत ज़्यादा है. मार्केट ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत है एंड जो पॉल्यूशन रिस्क है वो भी काफ़ी हाई है बिकॉज ई वेस्ट इज बीइंग जनरेटेड एट अ रिकॉर्ड स्पीड. बैटरी वेस्ट को देखते हैं तो बैटरी वेस्ट भी इस टाइम पे पोटेंशियल साइज ऑफ मार्केट इज मीडियम, क्योंकि जो ली आयन बैटरीज हैं या लिथियम आयन बैटरीज हैं अभी तक उनका इतना ऑफ टेक नहीं हुआ, तो क्योंकि रिसाइकलिंग आफ्टर 5 to 7 years होती है, तो इंडिया के अंदर अभी इतनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है. सिमिलरली कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट को देखते हैं तो यहाँ पोटेंशियल साइज ऑफ द मार्केट इज लो वर्सेज अदर्स. मेटल्स को देखते हैं तो मेटल्स में भी पोटेंशियल साइज ऑफ द मार्केट ह्यूज है. पेपर को देखते हैं तो पेपर में भी वेरी बिग पोटेंशियल साइज ऑफ मार्केट. रबर एंड टेक्सटाइल को देखते हैं तो मीडियम टू लो पोटेंशियल साइज ऑफ मार्केट है. सो दीज आर द डिफरेंट मटीरियल्स विच कैन बी रिसाइकल्ड. तो जब हम इस इंडस्ट्री की डिफेंसिबिलिटी को देखना चाहते हैं तो एक्चुअली में 2008 एंड 2009 के अंदर बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था. एंड अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिपब्लिक सर्विसेज को देखते हैं, विच आर टू वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज लिस्टेड इन यूएस एंड कनाडा, तो इन स्पाइट ऑफ सच अ बिग फाइनेंशियल क्राइसिस इन कंपनीज की वॉल्यूम डीग्रोथ ही नहीं हुई. माने 4-5% वॉल्यूम डीग्रोथ थी सिर्फ, और ईबिटा मार्जिन 25-30% के बीच में थे. तो वॉट दिस टेल्स अस इज दैट की वेस्ट जनरेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट इज़ अ वेरी डिफेंसिबल इंडस्ट्री बिकॉज वेस्ट जनरेशन कम नहीं होती ह्यूमन सिविलाइजेशन की. सो दिस इज वाई वी आर स्टडिंग दिस इंडस्ट्री एंड दिस इज अ न्यू इंडस्ट्री फॉर अस टू स्टडी एज वेल. एंड एक रीजन और जिसकी वजह से हम इस इंडस्ट्री को पढ़ रहे हैं, क्योंकि EPR नॉर्म्स आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड EPR गाइडलाइंस आ रही हैं. तो EPR का क्या मतलब होता है? दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि सपोज करते हैं एक्साइड लेड एसिड बैटरीज बनाते हैं एंड जो एक्साइड की लेड एसिड बैटरीज है वो लैंडफिल के अंदर पाई जाती हैं. तो अकॉर्डिंग टू द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इट इज़ एक्साइड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि जितनी भी लेड एसिड बैटरी एक्साइड की फैक्ट्री से गई है वो रिसाइकल होकर या तो एक्साइड बाज आ रहे हैं या फिर उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है. दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज EPR नॉर्म्स हर एक इंडस्ट्री में आ रहे हैं. प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर भी आए हैं, सिमिलरली अभी जो बैटरी इंडस्ट्री है इसके अंदर भी आए हैं एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर अप्लाई हो रहे हैं. या तक जो ई वेस्ट है उसके अंदर भी आए हैं. सो दिस इज ऑल्सो गिविंग अ पॉलिसी टेलविंड टू द इंटायर इंडस्ट्री. इसके साथ साथ देखते हैं अगर हम डिफरेंट मेटल्स की बात करते हैं तो डिफरेंट मेटल्स की जब हम रिसाइकलेबिलिटी देखते हैं, चाहे हम लेड की बात करें, चाहे हम एलुमिनियम की बात करें, चाहे हम लिथियम की बात करें, राइट, या चाहे हम बेसिकली स्टील की बात करें, तो दिस इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव डेटा पॉइंट. इज दैट कि जब हम लेड की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो लेड इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिसाइकल्ड मेटल इन द वर्ल्ड. सेकेंडरी लेड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 80% ऑफ टोटल लेड प्रोडक्शन इन इंडिया. बेसिकली जो लेड है एक ऐसा मेटल है जिसकी इनफाइनाइट रिसाइकलेबिलिटी है, बड़ा लो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है और केपेक्स कॉस्ट भी बहुत लो है. एंड 95% रिसाइकलेबिलिटी है ऑफ अ सिंगल लेड एसिड बैटरी. डोमेस्टिक लेड रिसाइकलिंग बेसिकली लार्जली अभी इनफॉर्मल है, 65% इनफॉर्मल है, बट एक बहुत बड़ा पॉलिसी टेलविंड आया है यहाँ पे, दैट इज ऑफ बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अगेन जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई है. तो इस चक्कर में फॉर्मलाइजेशन इस इंडस्ट्री की बहुत बढ़ रही है, तो हम इसका डिस्कशन करेंगे. फिर जब हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग की बात करते हैं, सो डोमेस्टिक इकोसिस्टम फॉर प्लास्टिक रिसाइकलिंग इज येट टू मैच्योर. अभी इतना मैच्योर इकोसिस्टम नहीं है, इवन दो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के अंदर नोटिफाई होते हैं, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट ट्रेसेबिलिटी इन प्लास्टिक इकोसिस्टम. तो जैसे बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, लाइक सो सिमिलरली जो प्लास्टिक इंडस्ट्री उसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए हैं. एंड अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री मैच्योर क्यों नहीं, बिकॉज प्लास्टिक एक बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं सॉर्ट आउट करना. फिर प्लास्टिक की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है जब रिसाइकलिंग होती है तो चेंज हो जाती है, And there's also a concern about the usage of recycled plastic versus virgin plastic. Virgin plastic जो plastic first time बनता है, right? So this is the difference between the two. फिर जब हम aluminium recycling की बात करते हैं, तो India में aluminium की demand 4.5 million ton की है, जिसमें से 40% recycled है. And secondary, मैंने जो use हो चुका है aluminium, उसकी growth primary aluminium की के इस time पे outpace करते जा रही है, right? तो aluminium recycling is also gaining in industry. लिथियम आयन बैटरीज की बात करते हैं तो इट इज़ येट टू टेक ऑफ इन इंडिया बिकॉज अभी स्क्रैप की अवेलेबिलिटी नहीं है एंड आई थिंक बिकॉज लिथियम आयन बैटरीज अभी ईवी कार्स इतनी नहीं बिक रही तो इट विल टेक 8 to 10 years फॉर द स्क्रैप टू बिकम रेडिली अवेलेबल सो दिस इज़ वाई अ लॉट ऑफ कंपनीज आर सेटिंग अप छोटे छोटे और पायलट प्लांट्स फॉर लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग फाइनली जब हम ई वेस्ट की बात करते हैं तो ई वेस्ट के अंदर भी अभी इतना इको सिस्टम मेच्योर नहीं है बट धीरे धीरे कुछ कंपनीज यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग काम कर रही हैं बिकॉज स्क्रैप की जो अवेलेबिलिटी है बहुत ही रैपिड पेस पे बढ़ रही है रैपिड पेस पे क्यों बढ़ रही है बिकॉज जितनी भी मोबाइल्स हो गए लैपटॉप्स हो गए टैबलेट्स हो गए तो इनका यूसेज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है राइट सो इस वजह से स्क्रैप की जो अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है फिर टायर रिसाइकलिंग है पेपर रिसाइकलिंग है बट दिस इज़ वॉट द इको सिस्टम ऑफ रिसाइकलिंग इन इंडिया लुक्स लाइक एंड दिस इज़ वाई वी आर स्टडिंग दिस इंडस्ट्री तो एक बार ये हम डिस्कशन करते हैं इंडिया के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री या सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर काम करते हैं सो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इंडिया के अंदर अगर हम सारे प्लेयर्स देखते हैं तो अगर आप गणेशा इकोस्फेयर की बात करेंगे तो वो टिपिकली प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर काम करते हैं ग्रेविटा की बात करते हैं तो लेड रिसाइकलिंग में काम करते हैं एंथनी वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं राइट एमएसटीसी की बात करते हैं तो ऑटो स्क्रैप में काम करते हैं इको रिको की बात करते हैं तो ई वेस्ट के अंदर है वाटेक वाबक वाटर ट्रीटमेंट के अंदर है सिमिलरली आयन एक्सचेंज वाटर ट्रीटमेंट के अंदर है हाई ग्रीन कार्बन एक और कंपनी है जो बहुत छोटी कंपनी है दे आर इन टू द रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन ब्लैक राइट और एक्सट्रैक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक फ्रॉम टायर्स फिर जो पी ओ सी एल है डैट इज पॉन्डी ऑक्साइड्स डैट इज ऑल्सो कंपनी डैट इज इन लेड रिसाइकलिंग टिन्ना रबर टायर रिसाइकलिंग में एंड जो जी आर बी है ये भी टायर रिसाइकलिंग में जी आर बी की तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है राइट बट अगेन दीज दिस इज वॉट द डोमेस्टिक इको सिस्टम फॉर रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकॉनमी लुक्स लाइक तो यहाँ पे कैपिटल गुड सप्लायर्स भी बहुत सारे हैं पर हम एकदम मेन मेन उन्हीं बिजनेसेस की बात करें जो डायरेक्टली इस ट्रेंड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं अब हम क्या करेंगे वीडियो के अंदर कि हम इस वीडियो में अब तीन पार्ट्स में चलेंगे पहले हम लेड एसिड बैटरी से रिसाइकलिंग की बात करेंगे फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे हम वेस्ट मैनेजमेंट इको सिस्टम की बात करेंगे एंड थर्ड पार्ट में हम जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग सिस्टम है उसकी बात करेंगे एंड फाइनली हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड एक रिटेल इन्वेस्टर की बुल मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि वी डू नॉट हैव एन एग्जिट फ्रेमवर्क एग्जिट फ्रेमवर्क के साथ साथ सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या आती है एक रिटेल इन्वेस्टर पास वैल्यूएशन फ्रेमवर्क नहीं है वी डोंट नो हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बिजनेसेस थर्ड की बिग प्रॉब्लम क्या आती है वी कैन नॉट फाइंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स एंड लास्ट की बिग प्रॉब्लम क्या आती है कि वी डू नॉट हैव अ फाइनेंशियल प्लान इन प्लेस विच कैन हेल्प यू फॉर मल्टीपल ईयर्स एंड मल्टीपल डेकेड्स सो ऑल दीज की फोर थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ एसओआईसी मेंबरशिप जहाँ पे हम आपको हर चारों चीज़ों पर एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं वेर यू कैन लर्न हाउ टू वैल्यू बिजनेसेस वेर यू कैन डेवलप योर ओन एग्जिट सिस्टम एंड इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली दैट यू कैन डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग इंडिपेंडेंटली एंड मोर ओवर यू कैन ऑल्सो फाइंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इंडिपेंडेंटली बाई यूजिंग मल्टीपल स्क्रीन्स दैट वी हैव टॉट इन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कोर्सेज इफ यू वॉन्ट टू रजिस्टर फॉर द एस ओ आई सी मेंबरशिप दैन लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड यू कैन यूज द कूपन कोड एस ओ आई सी बोनस 10 विच इज वैलिड फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स अब हम डिस्कशन करते हैं बैटरी मैनेजमेंट इंडस्ट्री का या जो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है तो जब हम बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रूल आया था बाय द नेम ऑफ BWMR दैट इज़ बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड ये रूल्स क्या कहते हैं दैट अगर आप देखते हैं तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 4 मार्च 2022 को बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी पे बहुत एम्फोसिस डाला एंड उस टाइम पे BWMR करके August 24, 2022 में एक रूल्स लॉन्च हुए तो ये रूल्स किस पे फोकस करते हैं बेसिकली बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स फोकस ऑन इंकरेजिंग रिसाइकलिंग ऑफ स्पेंट बैटरीज बाय मैंडेटिंग extended producer responsibility basically by mandating extended producer responsibility ki jo battery producers hain right to unke upar responsibility hai that you have to make sure ki jo spent battery hai jo used battery hai you will be held accountable for collection recycling and use of recycled material in new batteries and is rule se kya aayega ki jo jaise main producers of batteries hain jo telecom batteries banate hain jo defense ke liye batteries banate hain jo vehicles ke liye batteries nikalte hain तो उनके ऊपर एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइक दे हैव टू मेक श्योर दैट दे आर बेसिकली लाइक कलेक्टिंग इट एंड उन जो बैटरी की रिसाइकलिंग है वो हो रही है सो इंडियन रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज येट टू अचीव मेचोरिटी बिकॉज यहाँ पे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स बहुत हैं एंड इस अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी नेक्स्ट 3 to 5 years में अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का जो मार्केट शेयर है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है रिसाइकलिंग के अंदर तो इसी से लिंक्ड, अगर आप आज इंडिया की लेड एसिड बैटरी का अगर आप मार्केट शेयर देखते हैं, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर आज क्लोज टू 65% के आसपास है। एंड पॉन्डी ऑक्साइड जो एक लिस्टेड कंपनी है, इसका 4.7% का मार्केट शेयर है। जब नाइल की बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो लिस्टेड कंपनी, इनका 4.2% का मार्केट शेयर है। पायलट इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो पायलट इंडस्ट्रीज़ का 3.1% मार्केट शेयर है। क्लोराइड मेटल्स जो एक्साइड की एक कंपनी है, जो एक्साइड का लाइक बैटरी रिसाइकलिंग देखते हैं, उनका 16.4% मार्केट शेयर है। जब आप ग्रेविटा इंडिया की बात करते हैं, तो ग्रेविटा का ऑलमोस्ट 6.6% के आसपास इस टाइम पे मार्केट शेयर है। एंड यहाँ पे इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट कर रही है, तो अगर हम इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन देखते हैं, तो अगर हम प्रेजेंटेशन देखते हैं ग्रेविटा की, तो अभी जो इंडियन लेड रिसाइकलिंग मार्केट है, FY16 में 9,000 करोड़ की थी, जो FY23 में 12,000 करोड़ की होगी है। एंड दे एक्सपेक्ट कि FY26 में 13,875 करोड़ की हो सकती है। एंड बिकॉज ऑफ द BWMR नोटिफिकेशन, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो फॉर्मल सेक्टर है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे प्लेयर्स लाइक पॉन्डी ऑक्साइड, ग्रेविटा या नाई, तो इनका जो आज मार्केट शेयर 35% का, दिस मार्केट शेयर कैन गो टू 75%। सो दिस इज़ वन ऑफ द रियल चेंजेस विच इज़ हैपेंड इन द इंडस्ट्री, एंड दिस इज़ वाई इट्स अ पॉलिसी ड्रिवन पुश कि इस टाइम पे इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। अब आप इस इंडस्ट्री में क्या करते हैं, हम लोग ग्रेविटा का डिस्कशन करते हैं, नाइल का डिस्कशन करते हैं, एंड पॉन्डी ऑक्साइड्स का डिस्कशन करते हैं, एंड यहाँ पे हम हेजिंग पॉलिसीज देखते हैं, एंड ये देखते हैं कि ग्रेविटा का कहाँ कहाँ पे प्लांट है, एंड जो नाइल एंड पॉन्डी ऑक्साइड्स है उनका भी एक डिस्कशन करते हैं। एंड जस्ट रिमेंबर, दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंडस्ट्री एनालिसिस, वी डोंट नो एनी ऑफ दी स्टॉक्स, आइडिया इज टू लर्न अबाउट मोर सच बिजनेसेस। तो जब हम ग्रेविटा का डिस्कशन करते हैं, तो ऑलमोस्ट 85% जो ग्रेविटा की प्रॉफिटेबिलिटी या EBITDA है, दैट कम्स फ्रॉम लेड एसिड बैटरी की रिसाइकलिंग से। बाकी ग्रेविटा क्या करते हैं, तो ग्रेविटा के जो बिजनेस वर्टिकल्स हैं, एक तो लेड एसिड बैटरीज रिसाइकलिंग में, सेकेंडली जो एल्यूमिनियम है ग्रेविटा उसको भी रिसाइकिल करता है, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग में भी है, रबर की रिसाइकलिंग में भी है, टर्नकी सॉल्यूशंस में भी है, एंड अपकमिंग डाइवर्सिफिकेशंस में जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उनके लिए भी एक पायलट प्लांट डाल रहे हैं, स्टील की रिसाइकलिंग के अंदर भी जा रहे हैं, स्क्रैप स्टील की, एंड साथ साथ जो पेपर है उसकी भी रिसाइकलिंग में जा रहे हैं। एंड ग्रेविटा के हम पार्टनर्स देखते हैं, जहाँ से ये बेसिकली लेड एसिड बैटरी सोर्स करते हैं, जिनको प्रोवाइड करते हैं, तो टोलिंग बिजनेस भी करते हैं। टोलिंग बिजनेस क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर पैनासोनिक इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, पैनासोनिक पे EPR लाइक लगी हुई है, डैट इज़ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड पैनासोनिक को क्या करना है कि ग्रेविटा को जो भी एक्सेस लेड है या फिर जो भी रीयूज लेड है, वो बेसिकली भेजते हैं ग्रेविटा को, एंड ग्रेविटा टोलिंग बिजनेस पे, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे, उसमें से जो बेसिकली रिसाइकल होकर निकलता है, डैट बेसिकली ग्रेविटा वापस पैनासोनिक को प्रोवाइड करता है। एंड ग्रेविटा किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अगर आप देखेंगे तो कमोडिटी एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में, तो कस्टमाइज लेड अलॉयज बनाते हैं, लेड शीट्स बनाते हैं, लेड ब्रिक्स बनाते हैं, जो रेड लेड है वो बनाते हैं, लेड ऑक्साइड बनाते हैं, कस्टमाइज एल्यूमिनियम अलॉयज बनाते हैं, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, एंड पेट फ्लेक्स बनाते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो इनका वैल्यू एडेड पोर्शन है प्रोडक्ट्स का, दैट इज गॉन फ्रॉम 42% to 50%। तो ग्रेविटा का बिजनेस इन अ नटशेल इज दिस। कैपेसिटी अगर आप देखते हैं ग्रेविटा की, तो FY23 में 2,33,900 tons पर एनम की थी, विच इज़ एक्सपेक्टेड कि FY26 में 4,34,319 tons की हो सकती है। सो दैट मीन्स कि कंपनी ऑलमोस्ट 86% से इस टाइम पे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, एंड कंपनी 600 crores के आसपास का केपेक्स कर रही है ओवर द नेक्स्ट 2 years। अलग हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स देखते हैं, एंड ग्रेविटा की स्क्रैप सोर्सिंग पॉलिसी देखते हैं, तो यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आती है। तो जब हम ग्रेविटा की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स देखते हैं, तो एक्चुअली में जो रेवेन्यूज है ग्रेविटा के, दैट इज 63% आर कमिंग फ्रॉम इंडियन बिजनेस, एंड ओवरसीज से 37% आ रहे हैं। एंड ओवर द लास्ट 5 years प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो CAGR है नियरली 35% का रहा है, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इंडिया बिजनेस में 61% है, वेरस ओवरसीज में 39% है। तो ये ओवरसीज बिजनेस है क्या ग्रेविटा का, इसको समझते हैं। तो अगर हम ग्रेविटा की जो प्रेजेंस को देखते हैं, तो ग्रेविटा इज प्रेजेंट इन अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, एंड बेसिकली अपकमिंग फैसिलिटीज़ देखते हैं, तो मिडिल ईस्ट के अंदर भी इनकी अपकमिंग फैसिलिटीज़ आ रही हैं। तो इनके जो प्लांट्स हैं या प्रेजेंस है, अफ्रीका में इनकी प्रेजेंस घाना में है, सेनेगल में, मोजाम्बिक में, तंजानिया में, एंड टोगो में है। एंड यहाँ पे इनकी प्रेजेंस क्यों है, सिंपल रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ स्क्रैप कलेक्शन। सो दिस इज़ वॉट द मोट ऑफ द बिजनेस इज़ और द कम्पिटेटिव एडवांटेजेस, एंड दिस इज़ वाई मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वॉन्ट टू डू सच बिजनेसिस। सो ग्रेविटा का जो सोर्सिंग नेटवर्क है, वो एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका से, एंड कंपनी हैज़ 26 लाइक सेल फोन यार्ड्स एंड क्लोज टू 1,000 टच पॉइंट्स इन बोथ एशिया एंड अफ्रीका, एंड इट हैज़ 90 टच पॉइंट्स इन यूरोप एंड अमेरिकाज। तो नियरली 80% ऑफ ग्रेविटा कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स फॉर अ गिवन ईयर आर लेड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सिंग ऑफ स्क्रैप फॉर द कंपनी इज लेड एसिड बैटरीज। तो लेड एसिड बैटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रैप एनक्लेम। एंड सारी लेड एसिड बैटरीज कहाँ से आती हैं? सो बेसिकली टेलीकॉम प्लेयर से आती हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस से आती हैं, एंड एज वेल एज जो बैटरी OEMs हैं उनके थ्रू आती है। एंड जो लेड स्क्रैप है और एल्यूमिनियम स्क्रैप एंड प्लास्टिक स्क्रैप है, ग्रेविटा वो ओवरसीज मार्केट से सोर्स करता है। तो ऑलमोस्ट 50-55% इनकी जो सोर्सिंग है वो ओवरसीज मार्केट से है। एंड ग्रेविटा हैज़ 50% मार्केट शेयर इन ऑल अफ्रीकन कंट्रीज वेयर इट हैज़ लाइक ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स ये है कि नियरली 50% इनके पास यहाँ पे मार्केट शेयर है। तो बैटरी OEMs प्रोवाइड लेड एसिड बैटरीज टू प्लेयर्स सच एस ग्रेविटा विच आर देन प्रोसेस्ड एंड देन लेड अलॉयज आर सोल्ड बैक टू बैटरी OEMs सच एस अमरा राजा HBL पावर थ्रू अ टोलिंग अरेंजमेंट। राइट, तो यहाँ पे फायदा क्या है कि जो टोलिंग अरेंजमेंट्स है उसमें मार्जिन्स आर फेयरली लो बट रिटर्न रेशियोज फॉर रिसाइकलिंग प्लेयर्स आर अट्रैक्टिव क्योंकि एसिड टर्न्स आए। तो लो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है ड्यू टू डोमेस्टिक सोर्सिंग एंड लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स टू कल्टिवेट अ प्रोक्योरमेंट नेटवर्क एंड लोअर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जब भी डोमेस्टिकली आप सोर्स करते हैं। सो दिस इज वॉट बिजनेस ऑफ ग्रेविटा इज। सो यहाँ पे सोर्सिंग का एक मेन कम्पिटेटिव एडवांटेज हो जाता है। एंड इनका जो नया केपेक्स आ रहा है, अगर आप नए प्लांट्स देखते हैं इनके कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको पता लगेगा नया प्लांट टेंजानिया के अंदर आ रहा है। तो प्रोजेक्ट अपडेट है तो टेंजानिया के अंदर कैपेसिटी आ रही है इनकी फॉर प्लास्टिक रिसाइकलिंग। फिर टोगो के अंदर इनकी कैपेसिटी आ रही है फॉर एक्सपेंडिंग द लेड रिसाइकलिंग जो ऑलरेडी इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। फिर जो चितूर इनकी इंडिया के अंदर कैपेसिटी और आ रही है लेड रिसाइकलिंग की, टेंजानिया में आ रही है, मुंड्रा में आ रही है एंड ओमन में आ रही है। सो दिस इज आउट द बिजनेस वर्क्स एंड दिस इज आउट द रिसाइकलिंग बिजनेस वर्क्स। तो इनका यहाँ पे गाइडेंस के, तो इनका गाइडेंस है दे वांट टू ग्रो देयर पैट बाय ऑलमोस्ट 35% के अगर। तो इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी देखते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी इनका जो एक्जिस्टिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है मोर देन 20% चल रहा है बिकॉज लेड एसिड बैटरी के अंदर इट्स द हाईएस्ट ROC बिजनेस व्हेन इट कम्स टू मेटल रिसाइकलिंग। तो लेड एसिड बैटरी के लिए क्योंकि इकोसिस्टम एस्टैब्लिश्ड है, डाउनस्ट्रीम पे बहुत सारी लेड एसिड बैटरीज अवेलेबल है, सो दिस इज वाई दिस हैज़ अ हाईएस्ट ROC। एंड जब हम पॉन्डी ऑक्साइड और नाइल से भी कंपेरिजन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ग्रेविटा के मार्जिन ज़्यादा हैं एंड ग्रेविटा का ROC ज़्यादा है। तो एक इसके पीछे भी रीज़न है, उसकी तरफ आऊँगा। तो यहाँ पे अगर हम इनका बेसिकली न्यू रिसाइकलिंग वर्टिकल्स देखते हैं लाइक लिथियम, स्टील, पेपर, एलुमिनियम एंड प्लास्टिक, तो करेंटली 85% EBITDA इनका जो आता है, 85% ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आती है, दैट प्योरली कम्स फ्रॉम द लेड एसिड बैटरी रिसाइकलिंग बिजनेस। रिमेनिंग इनका जो बाकी अदर बिजनेसेस है जो टर्नकी सॉल्यूशन है उसमें से आता है। तो टर्नकी सॉल्यूशन में क्या करते हैं, बेसिकली दूसरे लोगों के लेड एसिड बैटरी मैनेजमेंट प्लांट्स लगाते हैं, तो दैट इज 2-3% ऑफ द रेवेन्यूज। एंड एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक इज लाइक 10-11% ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी अगर हम रिसाइकलर को देखते हैं तो एक रिसाइकलर पास रिस्क क्या होता है कि अगर मैं स्क्रैप प्रोक्योर कर रहा हूँ तो ये ना हो कि जब मैं स्क्रैप प्रोक्योर कर रहा हूँ, जैसे इनके केस में लेड एसिड बैटरी को प्रोक्योर कर रहा हूँ एंड उसमें से जब लेड एलॉयज बना के बेच रहा हूँ, तो ये ना हो कि जब मैंने लेड प्रोक्योर करा तो लेड का प्राइस क्रैश कर जाए। जैसे मैंने अगर 100 रुपीज़ पे लेड लिया एंड प्राइस उसका 60 रुपीज़ हो गया तो मेरे को 40 रुपीज़ इन्वेंट्री लॉस बुक करना पड़ेगा। तो अगर आप ग्रेविटा इंडिया के 2015 से लेकर 2018 तक रिपोर्टेड फाइनेंशियल्स देखेंगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा मार्जिन्स बहुत वॉलेटाइल है। ये मार्जिन्स इसलिए वॉलेटाइल है क्योंकि इन्वेंट्री लॉसेज एंड इन्वेंट्री गेंस की साइकिल चलती रहती थी इस बिजनेस में। बट ग्रेविटा ने क्या करा कि हेजिंग मैकेनिज्म अडॉप्ट करा। तो हेजिंग मैकेनिज्म क्या होता है कि कमोडिटी प्राइसेस लॉक इन हो जाते हैं कि अगर लेड आप इतने पे अक्वायर करें तो आप आगे जो बायर्स होते हैं उनके साथ भी इतना अग्रीमेंट करते हैं कि इसी प्राइसेस पे आप लेंगे। सो दिस इज लेड टू डी रिस्किंग ऑफ वॉलिटिलिटी इन द बिजनेस। तो बिजनेस का बिकॉज ऑफ कोर इन्वेंट्री हेजिंग एंड बैक टू बैक हेजिंग से अगर आप EBITDA मार्जिन देखते हैं तो एनीवेयर बिटवीन 7-10% इनका EBITDA मार्जिन रहने वाला है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट चेंज विच हैपेंड पोस्ट 2019 इन द बिजनेस एंड दिस इज वाई द बिजनेस हैज डन रियली वेल। तो ये वॉलेटाइल से कंसिस्टेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स। बट यहाँ पे की रिस्क फैक्टर क्या है कि जो एल्यूमिनियम वाला बिजनेस है, तो एल्यूमिनियम वाले बिजनेस में अभी तक कोई वे नहीं है रॉ मटेरियल के प्राइसिंग को हेज करने का, माने आप उसमें अभी प्राइसिंग लॉक इन नहीं कर सकते। सो दिस इज वाई वहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट 1-1.5 ईयर में बहुत वॉलिटिलिटी रही है बिकॉज एल्यूमिनियम प्राइसेस वेल अलॉट। बट Q1 ऑफ FY25 से मैनेजमेंट क्या गाइड करिए कि MCX के साथ ये काम करें टू कम अप विद एन इन्वेंट्री हेजिंग मैकेनिज्म फॉर एल्यूमिनियम एज वेल। इसके बाद अगर इनकी एक्सपेंशन देखते हैं फ्रॉम टू नॉन लेड एसिड बैटरी बिजनेसेस, तो लिथियम के अंदर इस टाइम पे पायलट प्लांट डाल रहे हैं, पेपर की रिसाइकलिंग में आ रहे हैं एंड जो एंड वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ रबर तो उसकी भी रिसाइकलिंग कर रहे हैं। बट लिथियम विल बी अ बिग मार्केट, बट लिथियम में अभी इतनी स्क्रैप अवेलेबिलिटी नहीं है। आई थिंक इट विल रियली टेक 8-10 ईयर्स फॉर अ सीरियस लाइक लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलर टू कम अप इन इंडिया बिकॉज अभी यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ बैटरीज ही नहीं है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तो बाकी हम इनके पीयर्स देखते हैं, तो एक इनका पीयर है बाय द नेम ऑफ पॉन्डी ऑक्साइड्स। अगर हम पॉन्डी ऑक्साइड्स का डिस्कशन करते हैं सो बेसिकली पॉन्डी ऑक्साइड्स का जगह अगर आप कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं तो टोटल स्क्रैप रिसाइकलिंग कैपेसिटी 120,000 टन की है, जो हमने देखा था इन द केस ऑफ ग्रेविटा इट इज क्लोज टू 233,000 टन. पॉन्डी ऑक्साइड के केस पे भी 90% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम लेड एसिड बैटरी बेसिकली रिसाइकलिंग. एंड इनका जो लेड सेल्स फॉर FY23 था वो 70,000 टन ही था, विच इज़ लाइक 1/3 ऑफ ग्रेविटा. एंड यहाँ पे बॉटल नेक्स इनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जिसकी वजह से इनका आउटपुट नहीं बढ़ पा रहा 85,000 टन से ज़्यादा. तो मार्जिन इनके बेसिकली 5-7% के आसपास हैं. यहाँ पे अगर एग्जांपल ग्रेविटा का लेते हैं तो उनका 7-9 या 10% भी मार्जिन चले जाते हैं. एंड इनका भी वैल्यू एडेड पोर्शन 45% के आसपास है, विच दे वॉन्ट टू फर्दर इम्प्रूव टू 70-75% इन नेक्स्ट 1-2 ईयर्स. एंड इस कंपनी की भी 90 कंट्रीज से सोर्सिंग होती है एंड दे आर ऑल्सो बेसिकली डूइंग अ प्रेफरेंशियल इशू एंड वारंट्स राइट नाउ. तो ये लोग अपनी जो कैपेसिटी है उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं एंड आई थिंक दे आर गाइडिंग फॉर मोर देन 2,000 crores प्लस सेल इन नेक्स्ट 1-2 ईयर्स एंड दे वॉन्ट टू हिट अ रन रेट ऑफ मोर देन 2,500 crores सेल्स इन 2 ईयर्स टाइम. सो अगेन दिस इज विद पॉन्डी ऑक्साइड्स एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन है बिकॉज एब्सोल्यूट मार्केट लीडर तो ग्रेविटा इंडस्ट्री में मार्जिन भी उनके बेटर है, पॉन्डी ऑक्साइड्स भी एक्सपेंशन कर रहे हैं. सिमिलरली जब हम नाइल का डिस्कशन करते हैं तो उनका साइज बहुत छोटा है, तो उनकी टोटल वॉल्यूम 61,000 टन की है, विच इज़ ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ ग्रेविटा. एंड इनके मार्जिन और भी वॉलेटाइल हैं, 3-5.5% के बीच में ईबिटा मार्जिन बनाते हैं. अगर हम नाइल का डिस्कशन करते हैं तो टॉप टू कस्टमर 100% ऑफ सेल्स के लिए अकाउंट करते हैं, दैट इज़ अमरा राजा बैटरीज एंड मंगल इंडस्ट्रीज. एंड अमरा राजा इज़ लाइक 90% ऑफ द रेवेन्यूज, बट अभी नाइल के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है कि अमरा राजा इज़ बेसिकली सेटिंग अप इट्स ओन कैपेसिटीज फॉर लेड एसिड बैटरी रिसाइकलिंग, सो दिस कुड इम्पैक्ट देयर वॉल्यूम्स एज वेल. सो दिस इज़ अ बिग रिस्क एंड इस रिस्क से कैसे डील करती है मैनेजमेंट, वी हैव टू सी. बट तीनों कंपनीज, चाहे हम ग्रेविटा की बात करें, बॉन्डी ऑक्साइड्स की बात करें या लाइक नाइल की बात करें, तीनों कंपनीज ने सब्सिडरी सेटअप करी है टू गेट इनटू लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग. बट अभी देखने के लिए टाइम रहता है कि हाउ डैट इंडस्ट्री डेवलप्स, बट दिस इज विद द इंडस्ट्री वेयर ग्रेविटा इज अ मार्केट लीडर, फिर सेकेंड पे पॉन्डी ऑक्साइड्स की कैपेसिटीज थोड़ी बड़ी है एंड थर्ड पे जब हम नाइल की बात करते हैं तो उनकी कैपेसिटीज छोटी है और कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी है. विद दिस नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द वेस्ट मैनेजमेंट स्पेस. तो अभी तो हमने बैटरी मैनेजमेंट स्पेस समझा, आपकी क्या की लर्निंग्स थी मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइए. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स अ वेस्ट मैनेजमेंट स्पेस. जब हम इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में हमें पता लगता है कि इंडिया में जो पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन है आज 450 grams पर पर्सन है, वेरस ग्लोबल एवरेज दिस नंबर इज समवेयर क्लोज टू 720-740 grams. डेनमार्क के अंदर अगर हम पर कैपिटा वेस्ट लाइक देखते हैं कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है तो इट इज़ क्लोज टू 788 grams. तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो MSWM मार्केट है इंडिया की, तो डैट इज़ एक्सपेक्टेड टू डबल इन नियरली 4-5 years. एंड साथ साथ अगर हम इंडिया के अंदर प्रैक्टिसेस देखते हैं, डैट इज़ कि कितना ओपन डंपिंग होता है, तो ओपन डंपिंग इंडिया के अंदर 77% होता है, वेरस ग्लोबल एवरेज 52% लैंडफिल के अंदर है, 25% रिसाइकल के अंदर है. वेरस इंडिया में आज रिसाइकलिंग का जो परसेंटेज है डैट इज़ ओनली 5%. एंड जो कंपोस्ड है या जो कंपोस्ट वेस्ट होता है इंडिया के अंदर 18% के आसपास है. सो बेसिकली जो म्यूनिसिपल सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट है इंडिया की, नेक्स्ट 4-5 years के अंदर यहाँ से डबल हो सकती है. एंड जो म्यूनिसिपल सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट की मार्केट है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि कभी कभी जो MSW वेस्ट है वो लैंडफील्ड के अंदर जाती है, राइट? तो वहाँ पे कंपनीज कलेक्शन एंड टिपिंग रेवेन्यूज कमाते हैं. कभी कभी इसके अंदर बेसिकली कंपोस्ट बनता है उसका, कभी कभी उसमें से रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल भी बनता है. तो हम सारी चीज़ें आराम से समझेंगे क्या क्या होता है ईच एंड एवरी स्टेप में. एंड एक वेस्ट टू एनर्जी भी होती है कि अब वेस्ट से फ्यूल बना के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी कंपनीज इंडिया के अंदर कर रही है. तो अगर हम साइज ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री देखते हैं तो इट इज़ क्लोज टू 4,500 crores टुडे एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि FY26 तक ये साइज मार्केट ऑलमोस्ट 7,000 crore का हो जाएगा म्यूनिसिपल सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट का. तो अब हम चलते हैं कि कंपनीज पैसा कैसे कमाती हैं एंड व्हाट इज़ द रेवेन्यू सोर्सेज फॉर दीज कंपनीज. तो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू सोर्सेज, दैट इज 50-60% ऑफ द रेवेन्यू, जस्ट कम्स फ्रॉम कलेक्शन एंड टिपिंग सर्विसेज. कलेक्शन एंड टिपिंग सर्विसेज क्या होती है? बेसिकली आपने वो जो अगर आप जैसे यहाँ वीडियो में भी देख सकते हैं कि जो जो डम्पस्टर ट्रक्स होते हैं, तो जब ये वेस्ट को कलेक्ट करते हैं एंड ये वेस्ट को ड्रॉप करते हैं लैंडफिल में, सो दिस इज़ वॉट कलेक्शन एंड टिपिंग मीन्स, राइट? एंड यहाँ पे जो फ्यूल कॉस्ट है दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉस्ट. एंड ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ये जो कंपनीज हैं, जैसे अगर एंटनी वेस्ट की बात करते हैं, सो दे विन फ्रॉम द MCDs, दैट इज़ अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस. तो टिपिंग एंड कलेक्शन इज द बल्क ऑफ द रेवेन्यूज फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज इन इंडिया. इट इज़ 50-60% के आसपास. सेकेंड सोर्स ऑफ जो रेवेन्यू जनरेशन है कंपनीज के लिए क्या होता है, दैट इज़ म्यूनिसिपल सीवेज वेस्ट प्रोसेसिंग. तो प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स इंक्लूड सॉर्टिंग एंड सेग्रीगेटिंग वेस्ट रिसीव फ्रॉम लाइक कलेक्शन एंड टिपिंग फॉलोड बाय कंपोस्टिंग रिसाइकलिंग श्रेडिंग एंड कंप्रेसिंग इनटू आरडीएफ। तो माने कंपोस्ट करके एक मटेरियल बनता है, अगर आप यहाँ देखेंगे वेस्ट से तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। एंड साथ साथ इसको रिफ्यूज डिराइड फ्यूल के अंदर बनाया जाता है। सो इट्स अ फ्यूल विच कैन बी यूज बाई इंडस्ट्रीज एंड इट इज सोल्ड टू अदर इंडस्ट्रीज। तो रिफ्यूज डिराइड फ्यूल इज अ हायर मार्जिन बिजनेस बट इट इज वेरी लेस इन टर्म्स ऑफ लाइक परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज टूडे। वेर एज जब हम फर्स्ट में जब हम कलेक्शन एंड टिपिंग रेवेन्यूज की बात करते हैं तो इट इज़ क्लोज टू यहाँ पे जो एक एवरेज कॉन्ट्रैक्ट होता है 7.7 ईयर्स के आसपास होता है। इसमें एस्केलेशन भी होते हैं बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन एंड फ्लैट रेट फॉर्मूलाज। फाइनली जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर्स की बात करते हैं तो अदर्स में क्या आते हैं, दैट इज एस्केलेशन बेस्ड ऑन फ्लैट रेट एंड इन्फ्लेशन। फिर एक और इनका रेवेन्यू सोर्स होता है, दैट इज नोन एज मैकेनाइज स्वीपिंग। जो आपने देखा होगा रोड्स की स्वीपिंग होती है, लाइक जो मशीन्स कर रही होती है, दैट ऑल्सो कम्स टू देम वन ऑफ देयर सोर्सेज फॉर रेवेन्यूज। और अगर हम सोर्सेज फॉर रेवेन्यू देखते हैं सो दैट इज वेस्ट टू एनर्जी। वेस्ट टू एनर्जी में क्या है, तो अभी एंटनी वेस्ट का रिसेंटली एक प्लांट स्टार्ट हुआ है। वेस्ट टू एनर्जी सिंपली मीन्स इज दैट कि आप वेस्ट को लेके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेस्ट से रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल बना रहे हैं और उससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। एंड साथ साथ जो ये लैंडफिल के कॉन्ट्रैक्ट जीतते हैं तो लैंडफिल के भी इनके कलेक्शन एंड टिपिंग रेवेन्यूज होते हैं। तो वहाँ पे भी वन कॉन्ट्रैक्ट ऑन एन एवरेज इज फॉर लाइक 15-20 ईयर्स। तो अगर हम एंटनी वेस्ट का यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 16 ईयर 10 ईयर्स का इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है जिसके अंदर लैंडफिल के अंदर बेसिकली उन्होंने एक चीज़ लगाई है बाय द नेम ऑफ बायो रिएक्टर्स, जो 6500 टन्स पर डे कर रहे हैं। सैनिटरी लैंडफिल पे 250 टन्स पर डे का है एंड 3 रुपीज़ पर यूनिट जो इनकी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी दे विल सेल टू बेसिकली BMC इन फ्यूचर। एंड मटेरियल रिकवरी एंड कंपोस्टिंग फैसिलिटी भी यहाँ पे इन्होंने लगाई है और गैस टू एनर्जी प्लांट भी इनका यहाँ पे। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट लास्ट टिल 2036 एंड 60% ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन मुंबई इज हैंडल्ड एट कंजू मार्क साइट विच इज द कॉन्ट्रैक्ट दैट दे हैव दैट दे ऑपरेट द लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी इन एशिया। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज। और अगर हम यहाँ कंपनी में देखते हैं 58% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन डोर टू डोर कलेक्शन या कलेक्शन एंड टिपिंग से आता है जो हमने बात करी और नंबर ऑफ ट्रिप्स पे कैलकुलेट होता है एंड करेंटली 12 ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स है। फिर MSW प्रोसेसिंग से 29% रेवेन्यू है और कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर्स से अभी 13% के आसपास इस कंपनी का रेवेन्यू आता है। अगर हम इस कंपनी की वैल्यू चेन समझते हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, डोर टू डोर कलेक्शन होती है राइट, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन होती है वेस्ट की राइट, और उसके बाद सेग्रीगेशन होती है वेस्ट की, फिर कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंडफिल्स होती है। तो मैनेजमेंट मैनेजेस लार्जेस्ट बायो रिएक्टर लैंडफिल, बेसिकली लैंडफिल को आपको मैनेजमेंट करनी होती है कि वहाँ पे अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप लैंडफिल वापस भी करते हैं पोस्ट बिडिंग जब आपका 2036 में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है तो लैंडफिल इज़ बेसिकली द वे यू गॉट द लैंड। बेसिकली आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट या जो मीथेन है उसके रेसिड्यू नहीं रहने चाहिए। फिर रिसाइकलिंग होती है, कंपोस्टिंग होती है एंड वेस्ट टू एनर्जी बनती है। कंपोस्टिंग में ऑर्गेनिक मटेरियल इज प्रोसेस टू प्रोड्यूस कंपोस्ट। सो दिस इज वॉट द वैल्यू चेन ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड दिस इज वॉट एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट डज एंड दिस इज हाउ दे मेक मनी। अगर हम कंपनी के अभी करंटली देखते हैं कि कौन कौन से सिटीज़ के अंदर किस किस टाइप के इनके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं सो दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग डैट वील गेट टू नो कि ये जो कलेक्शन एंड टिपिंग जो है दैट इज़ अगर हम फर्स्ट देखते हैं तो ऑलमोस्ट जितने भी सिटीज़ में इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर हम पिंपरी चिंचेवाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लाइक उसका छोड़ें या फिर मुंबई में एक दो कॉरपोरेशन को छोड़ें तो ऑलमोस्ट सारी एरियाज़ में कलेक्शन एंड टिपिंग हो रही है इनकी। जो झांसी स्मार्ट सिटी में भी हो गया पर जो ग्रेटर नोएडा है वहाँ पे ये नहीं कर रहे। फिर जो मैकेनाइज स्वीपिंग है अगर आप देखते हैं तो मैकेनाइज स्वीपिंग इस टाइम पे 5 सिटीज़ में कर रहे हैं। फिर म्यूनिसिपल सीवेज प्रोसेसिंग ये 3 सिटीज़ में कर रहे हैं एंड इन्होंने एक नया बिजनेस लॉन्च करा है डैट इज़ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन। तो मुंबई में अभी इन्होंने लॉन्च करा है तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स विन करें कि जो बिल्डर्स हैं कंस्ट्रक्शन के बाद जब डेमोलिशन होती है तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बिल्डिंग का वेस्ट रह जाता है तो उस वेस्ट को कलेक्ट करके उसको सैंड और एग्रीगेट में प्रोसेस करके ही सेल करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिजनेसेस दैट दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड एंड वहाँ पे कलेक्शन एंड टिपिंग रेवेन्यूज भी इनको मिलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो न्यू पार्ट ऑफ द बिजनेस। वैसे अगर हम इस कंपनी के कंपेटिटर्स देखते हैं तो कंपेटिटर्स में रैमकी एनविरो इंजीनियरिंग आते हैं। तो कंपेटिटर्स में ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल लैंडफिल्स और कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में रैमकी ये करता है, एंटनी वेस्ट ये करता है, मेट्रो वेस्ट सिर्फ 2 चीज़ें करते हैं, डेट इज कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। एंड वेयर एज अगर फोर्थ कंपेटिटर देखते हैं डेट इज BVG, वो भी ये 3 चीज़ें करते हैं, डेट इज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन और जो लैंडफिल्स की मैनेजमेंट है कंपनी वो करती है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज देखते हैं तो रेवेन्यूज 298 करोड़ से बढ़कर आज 877 करोड़ हुए हैं, जिसमें अगर हम कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज वेस्ट देखते हैं तो डैट हैज़ गॉन फ्रॉम 167 करोड़ टू 470 करोड़. MSW प्रोसेसिंग माने जो म्यूनिसिपल सीवेज की प्रोसेसिंग करते हैं जिससे कॉम्पोस्ट और ये सब बनाते हैं, डैट हैज़ गॉन फ्रॉम 76 करोड़ टू 175 करोड़. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर्स हैं इस पर बेसिकली इनका रेवेन्यू 55 से 232 करोड़ के है. इनके जो ईबिटा मार्जिन अभी आर्टिफिशली डिप्रेस दिखते हैं बिकॉज देयर इज एन अकाउंटिंग हिट जो ये कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर्स के अंदर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इंड एस. तो इनके जो कोर ईबिटा मार्जिन है आज भी 21-24% के बीच में है, राइट. एंड कंपनी का जो कोर रोसी है आज भी मोर देन 15% के आसपास है इफ़ यू डू दिस एडजस्टमेंट इफ़ यू रीड द कॉन कॉल्स एंड स्टफ. एंड इसके अलावा मैनेजमेंट की क्या गाइडेंस है, डेट दे वॉन्ट टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 20-24% नेक्स्ट ईयर. एंड वेस्ट टू एनर्जी का भी इनका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो वेस्ट टू एनर्जी में 25 मेगावाट्स का प्लांट है जिससे 50 करोड़ की सेल हो सकती है एंड वहाँ पे 40-45% ईबिटा मार्जिन है. सो डैट इज़ अगेन वेरी ईबिटा क्रिएटिव, 20-25 करोड़ प्लस ईबिटा बन सकता है. अब एंटिटी वेस्ट जैसे बिजनेस के अंदर क्या रिस्क रहेंगे, सबसे बड़ा रिस्क है कि यार आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से डील कर रहे हो तो आपको ट्रेड रिसीवेबल का रिस्क रहेगा. इवन दो इनकी वर्किंग कैपिटल डेज आई थिंक अगर हम देखें तो उतने मतलब टिपिकल B2G वाले 300-400 दिन नहीं है, आई थिंक 100-110 डेज के बीच में, बट स्टिल इट इज़ अ रिस्क बिकॉज कभी कभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जब हेड्स नहीं इलेक्ट होते तो जो भी एस्केलेशन आती है जैसे फ्यूल का प्राइस बढ़ गया तो आपको आगे एस्केलेशन पास ऑन करनी है तो आप वो नहीं कर सकते, सो डैट बिकम्स अ रिस्क. या तो वो हो जाता है बट इट कम्स विद अ लैग इफेक्ट, तो ट्रेड रिसीवेबल्स का एक रिस्क बन जाता है. सेकेंडली कंपनी पे अभी इनकम टैक्स रेड हुई थी पोस्ट लिस्टिंग, तो आई थिंक 50-60 करोड़ का कुछ अमाउंट था जो इन्होंने अपने वेंडर्स को पे करा था और TDS रिड्यूस करा था, बट वेंडर्स ने आगे से सब वेंडर्स ने दिल्ली के अंदर आगे रिपोर्ट नहीं करा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को. सो अगेन डैट लेड टू अ टैक्स रेड ऑन देम. बट डैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग बिकॉज अभी ग्रैंड थॉल्टन इनका ऑडिटर है एंड अभी तक आई थिंक कोई इन पे जो एज सच बहुत बड़ी लाइबिलिटी प्रूव नहीं हुई. सो अगेन बट दैट इज़ अ रिस्क बिकॉज 2-3 ईयर्स बैक ये कंपनी का IPO आया था. थर्ड रिस्क है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस मॉडल है, इसको सिंप्लीफाई करना एक बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. सो दैट इज़ समथिंग कि वन हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यूज और एक इंड एस की आइटम है जिसकी वजह से अब इनके मार्जिन डिप्रेस हो रहे हैं, तो उसको समझना थोड़ा ज़रूरी है. बट दिस इज़ अ रिस्क फैक्टर, दिस इज़ द टोटल एड्रेसेबल मार्केट एंड यहाँ पे यही है प्लेयर्स बेसिकली अवेलेबल है. एंटी वेस्ट मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री विच विल बी द लास्ट इंडस्ट्री डैट वी विल कवर. तो अब हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री की बात करने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि कौन कौन से टाइप के प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकते हैं. तो जब हम प्लास्टिक्स की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली यूज प्लास्टिक इज पॉलीएथिलीन जिसको हम PET भी कहते हैं. तो PET हमारी बेवरेज बॉटल्स, फूड बॉटल्स, जार्स एंड पॉलिएस्टर क्लोथिंग और रोप्स में यूज होता है एंड 15% ऑफ प्लास्टिक यूसेज PET की होती है एंड इट इज़ वेरी कॉमनली रिसाइकल्ड. HDPE की बात करते हैं, डैट इज़ हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन. तो आपके मिल्क कार्टन्स हो गए, आइसक्रीम के जार्स हो गए, या फिर आपकी जो शैम्पू बॉटल्स या डिटर्जेंट बॉटल्स होगी या सीरियल बॉक्स लाइनर हो गए, सो ऑल ऑफ डैट इज़ HDPE माने हार्ड फॉर्म ऑफ प्लास्टिक एंड उसका 14% यूसेज है प्लास्टिक में. इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमनली रिसाइकल्ड. फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड है विच इज़ अगेन प्लम्बिंग पाइप्स और इन सब चीज़ों में यूज़ होता है या रेन गटर्स हैं या फिर जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनमें यूज़ होता है. सो अगेन दिस इज़ कॉमनली रिसाइकल्ड बट नॉट वेरी कॉमनली रिसाइकल्ड बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है. सो दीज आर टू और थ्री प्लास्टिक्स विच आर वेरी कॉमनली रिसाइकल्ड. तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली PET की एंड HDPE की बिकॉज इनकी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत हो रही है. तो जनरली अगर हम वैल्यू चेन या फिर अगर हम देखते हैं कि वॉट इज़ अ गवर्नमेंट पुश, सो देर आर टू गवर्नमेंट रेगुलेशन विच हैव कम. सो फर्स्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने मैंडेट करे कि 30% ऑफ जो न्यू PET बॉटल्स उस बॉटल्स हैं उनके अंदर रिसाइकल कॉन्टेंट होना चाहिए. तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इन्फोर्स दिस एंड बाई 2028-2029 दिस शुड गो टू 60%. माने कि जो भी आपकी बॉटल्स जो आपकी यूज़ हो रही है बेवरेजेस की तो उनके अंदर अभी दे आर बेसिकली मेड यूजिंग वर्जिन PET, तो उसके अंदर रिसाइकल PET होना चाहिए, दैट इज़ RPET, राइट. तो यहाँ पे अभी 30% का मैंडेट है, तो धीरे धीरे करके 60% तक ही गवर्नमेंट लेके जाना चाहती है. तो दिस इज़ द फर्स्ट बिग पॉलिसी पुश. सेकेंड बिग पॉलिसी पुश इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जब हम HDPE की बात करेंगे अगेन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज पे इन्फोर्स हो रहा है डैट द कंपनीज हैव टू मेक श्योर कि जो भी उनके प्रोडक्ट्स या फिर जो भी उनकी पैकेजिंग जा रही है डैट इज़ एट द एंड ऑफ द डे बेसिकली रिसाइकल्ड. सो दिस इज़ वॉट द टू पॉलिसी पुशेज आर. तो अगर हम वैल्यू चेन देखते हैं स्पेशली जब हम RPET के टाइम की बात करते हैं तो जो रिसाइकल्ड PET की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि रिसाइकल्ड PET की मार्केट 2028-2029 में ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन पर एनम की बन सकती है. एंड यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो श्री चक्रा हो या गणेशा इकोस्फेयर हो, तो हम गणेशा इकोस्फेयर का डिस्कशन करेंगे क्योंकि लिस्टेड गणेशा इकोस्फेयर है। तो गणेशा इकोस्फेयर ने अपनी कॉन कॉल में बार बार बोला है कि दे वॉन्ट टू टारगेट 25-30% ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्केट, विच मीन्स 250,000-300,000 टन तक का कपैसिटी बनाना चाहते हैं, जो आज 42,000 टन पर एनम के आरबीईटी के अंदर। सो दीज आर द बिग पॉलिसी पुशेज विच आर कमिंग इन टू दिस इंडस्ट्री। तो अब इस इंडस्ट्री की हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और वैल्यू चेन देखते हैं। तो इस इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, तो बेसिकली बहुत ही अगर हम बेसिक्स में बात करें, तो जब हम गणेशा इकोस्फेयर की भी बात करते हैं, तो 82% रेवेन्यू उनका रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर स्टेबल फाइबर नाम की एक चीज़ से आता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली पेट बॉटल वेस्ट को लेते हैं, फिर पेट बॉटल फ्लेक्स एंड चिप्स बनते हैं उसे। तो आप यहाँ पे प्रोसेस देख सकते हैं, तो पेट बॉटल वेस्ट को लिया, बहुत सारे अगेन यहाँ पे जो स्क्रैप डीलर्स हैं उनके साथ नेटवर्क करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बिल्ड दैट सप्लाई चेन। देन पेट बॉटल फ्लेक्स एंड चिप्स बनते हैं उससे, फिर उससे रिसाइकल पॉलिएस्टर स्टेबल फाइबर बनता है, एंड रिसाइकल पॉलिएस्टर स्टेबल फाइबर से आरबीईटी यान बनता है, एंड रिसाइकल पॉलिएस्टर फैब्रिक बनता है। पर गणेशा इकोस्फेयर का मेजर बिजनेस, जो बेस बिजनेस है, वो आरपीएसएफ में, डैट इज रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर स्टेबल फाइबर, एंड ये गणेशा बेसिकली जो डिफरेंट टेक्सटाइल कंपनीज है उनको सेल करता है, राइट। तो यहाँ पे आज इंस्टॉल कैपेसिटी इनकी 96,600 टन पर एनम की है, एंड इसके 35-40 मैन्युफैक्चरर्स हैं जो आरपीईटी बेसिकली यूज़ करके आरपीएसएफ बनाते हैं। और इन द एंटायर वैल्यू चेन आरपीएसएफ के मार्जिन आर द लोएस्ट, और इसका जो रियलाइजेशन है कुछ 95 रुपीज़ पर किलो के आसपास होएगा। तो इसकी अगर वैल्यू चेन के अंदर वापस चलते हैं, तो क्या होता है, पेट बॉटल की कलेक्शन होती है, फिर उनकी सॉर्टिंग होती है, फिर उनकी वॉशिंग होती है उसमें से इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए, फिर उनकी श्रेडिंग और क्लीनिंग होती है जिससे फ्लेक्स बनते हैं, फिर कन्वर्जन ऑफ फ्लेक्स टू रेजिन होता है, राइट, फिर उनकी स्टोरिंग होती है, एंड फिर ट्रांसपोर्टेशन टू एंड यूजर इंडस्ट्री होती है। तो ये तो इनका एक प्रोडक्ट है, डैट इज़ आरपीएसएफ, राइट। सेकेंड प्रोडक्ट है रिसाइकल पॉलिएस्टर स्पन यान एंड फिलामेंट यान। तो इसमें थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी है, और यहाँ पे ईबिटा मार्जिन भी 20-25% में बनता है। अगर हम आरपीएसएफ की बात करें, तो आरपीएसएफ में ईबिटा मार्जिन 11-13% के बीच में रहता है, विच इज़ स्टेबल मोस्टली ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। वेयर एज जब हम रिसाइकल पॉलिएस्टर स्पन यान एंड फिलामेंट यान की बात करते हैं, विच इज़ अगेन वन ऑफ द लाइक फॉरवर्ड प्रोसेस फ्रॉम रिसाइकल पॉलिएस्टर स्टेबल फाइबर, तो वहाँ पे जो मार्जिनस हैं दे आर बिटवीन 20-25%। एंड यहाँ पे बेसिकली ब्रांड्स को आप जो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, करंटली ओनली टू प्लेयर्स आर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग दिस, और ग्लोबली प्रीमियम फॉर रिसाइकल्ड यान है वर्सेस वर्जिन, बिकॉज अगेन वर्ल्ड में सस्टेनेबिलिटी का ट्रेंड बढ़ रहा है। और गणेशा इकोस्फेयर ने एक ब्रांड बनाया बाय द नेम ऑफ गो रिवाइज, राइट। तो ये तो हमने देखा है जो इनका सेकेंड प्रोडक्ट डिविजन, डैट इज रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर स्पन यान एंड फिलामेंट यान। फिर थर्ड हम बात करते हैं आरपीईटी चिप्स की, जो ये बॉटल टू बॉटल बना रहे हैं इस टाइम पे। माने अगर आप किनले का अभी रिसेंटली आई थिंक लॉन्च हुआ था, दैट इज़ यूजिंग आरपीईटी, वो आई थिंक साउथ इंडिया में लॉन्च हुआ था, दैट इज़ की वो जो बॉटल है उनकी, तो वो बॉटल में रिसाइकल्ड पेट यूज़ होगा। यूरोप के अंदर तो रेगुलेशन ऑलरेडी है कि आपको रिसाइकल्ड पेट यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ बेसिकली यूजिंग द न्यू पेट, बिकॉज या इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्जिन पेट, बिकॉज रिसाइकलिंग से सर्कुलर इकोनॉमी का ट्रेंड बनता है। तो अगर हम आरपीईटी की बात करते हैं एंड बाकी इनके बिजनेस डिविजन्स की बात करते हैं, तो आपको कुछ रियलाइजेशंस ऐसे दिखेंगे। तो जो रियलाइजेशन है, माने पर किलो कितने पे बिकता है, तो स्क्रैप पेट बॉटल 40-45 रुपीज़ की आती है, आरपीईटी फ्लेक 65 रुपीज़ के बिकते हैं, आरपीईटी चिप्स, राइट, सो दैट इज़ बिटवीन 100 रुपीज़ प्लस के आसपास, अभी 100-110 के बीच में चल रहा है, राइट। लाइक आरपीएसएफ की बात करते हैं, तो जो हमने रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर स्टेबल फाइबर की बात करी, तो वो 95 रुपीज़ के आसपास पर किलो उनका रियलाइजेशन है, और रिसाइकल्ड यान का 130 रुपीज़ पर किलो के आसपास का रियलाइजेशन है। एंड इन बिजनेसेस में इबिट्टा पर किलो क्या है, तो आरपीईटी चिप्स जो बेसिकली बॉटल टू बॉटल में यूज़ होते हैं, उसमें इबिट्टा पर किलो इज़ एनी वेयर बिटवीन 25-30 रुपीज़। फिर लाइक रिसाइकल्ड यान की बात करते हैं, तो उसमें जो इबिट्टा पर किलो है, डैट इज़ एनी वेयर बिटवीन 35-40 रुपीज़। बिकॉज आरपीएसएफ की बात करते हैं, विच इज़ द कमोडिटी बिजनेस, जो आज 80-82% ऑफ द बिजनेस है, वहाँ पे जो इबिट्टा पर किलो है, डैट इज़ एनी वेयर बिटवीन 10-12 रुपीज़ के आसपास, और उसकी जो रियलाइजेशंस हैं एंड उसकी जो साइकिल है, वर्जिन प्लास्टिक पे भी डिपेंड करती है। वर्जिन प्लास्टिक क्या होता है, बेसिकली ब्रांड न्यू मैन्युफैक्चर्ड प्लास्टिक, क्योंकि इट ट्रेड्स एट अ 10-15% डिस्काउंट टू इट। तो जब वर्जिन प्लास्टिक के प्राइसेस गिर जाते हैं, और अगर आरपीएसएफ के प्राइसेस वही रहते हैं, सो अगेन पीपल स्टार्ट प्रेफरिंग द यूजेज ऑफ वर्जिन प्लास्टिक ओवर द आरपीएसएफ। सो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस जो इस इंडस्ट्री के अंदर फेस होता है। और अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें या गणेशा इकोस्फेयर की बात करें, तो अभी गणेशा इकोस्फेयर ने दो बड़े बड़े केपेक्स करें, राइट, एक्चुअली तीन बड़े बड़े केपेक्स करें। एक तो नेपाल में यूनिट बनाया है, एंड नेपाल में जो यूनिट बनाया है डैट इज़ अ वॉशिंग एंड चिप प्लांट, राइट। तो वहाँ से रॉ मटेरियल 15% चीपर पड़ता है और टैक्स रेट 12% है, तो वो इंडिया के अंदर इनका बेसिकली वॉशिंग हो गया एंड चिप हो गया, बेसिकली रॉ मटेरियल आता है। कानपुर के अंदर इन्होंने HDPE का पायलट प्लांट लगाया, डैट इज़ हार्डन प्लास्टिक का, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 टन पर एनम की कैपेसिटी लगाई है, विच दे वॉन्ट टू रैम्प अप टू, और वहाँ से 100 करोड़ के आसपास की सेल आ सकती है, वहाँ पे 20% इबिट्टा मार्जिन बन सकता है। तो टोटल अगर इनकी कैपेसिटी देखते हैं हम लोग, तो वारंगल में इनका 450 करोड़ का केपेक्स हुआ है, जहाँ पे RPET ग्रैन्यूल्स, बेसिकली जो बॉटल टू बॉटल की हमने बात करी, 14,000 टन की कैपेसिटी दिखती है। बट इनका जो लाइन है वो स्टारलिंगर से आ रही है, तो इनकी मशीन भी बहुत महंगी है। आई थिंक वन मशीन कॉस्ट फॉर मोर देन 100 to 150 crores। तो यहाँ पे तीन लाइन्स लगा रहे हैं RPET ग्रैन्यूल्स की, तो टोटल में इनकी जो कैपेसिटी है बाय बेसिकली जून 2024 विल गो टू 42,000 जस्ट फॉर RPET ग्रैन्यूल्स, एंड दिस इज अ हायर मार्जिन बिजनेस। इसके अंदर 20 to 25% EBITDA margins भी बन सकते हैं एज पर वॉट द मैनेजमेंट इज सेइंग, राइट। सो दिस इज वॉट द कंपनी इज डूइंग यूनिकली एट द मोमेंट। एंड वारंगल के अंदर इनका ऑलमोस्ट 600 crores का केपेक्स हो चुका है, राइट, बिकॉज वहाँ पे इन्होंने फर्दर एक्सपेंशंस भी करी है। आई थिंक टोटल जो इनकी कैपेसिटी है वारंगल में RPSF को डाल के, रिसाइकल यान को डाल के, एंड बेसिकली ये जो हमने इसकी बात करी RPET ग्रैन्यूल्स को डाल के, तो टोटल कैपेसिटी अब 72,000 टन पर एनम की हो जाएगी। और कंपनी में प्रमोटर्स ने अभी वारंट भी डाले हैं, राइट। तो कंपनी ने आई थिंक प्रमोटर्स ने कुछ 1000 प्लस के आसपास एक वारंट इशू भी करा है कंपनी के अंदर, एंड जो बाकी के फंड्स हैं उन्होंने भी इन्वेस्ट करा है। एंड इनकी यहाँ गाइडेंस क्या है कि दे वॉन्ट टू टेक देयर मार्जिन्स टू कंसॉलिडेटेड बेसिस पे 15-16% टाइप्स नेक्स्ट ईयर, एंड देर कुड बी अ 50% ग्रोथ इन रेवेन्यूज। तो आज हमें जो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है सप्रेस दिख रही है बिकॉज ऑफ हायर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट। सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन गणेशा इकोस्फेयर, एंड इट इज़ वन ऑफ द ओनली लिस्टेड कंपनीज जो प्योरली प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर है, पेट रिसाइकलिंग के अंदर, एंड अब HDPE के अंदर भी आ रहे हैं, एंड देर आर लॉट ऑफ ऑप्शनैलिटीज ओवर देर। तो करंटली अगर देखेंगे तो 42,000 टन पर एनम का ही बेसिकली जो RPET ग्रैन्यूल्स कर रहे हैं, बट वहाँ पे मार्केट अगर 1 मिलियन टन की जाती है बिकॉज गवर्नमेंट बोल रही है बेसिकली जितने भी जो भी लोग बॉटल्स मैन्युफैक्चर करते हैं कि 30% RPET यूज़ होना चाहिए एंड 60% RPET ओवर 2028-2029 यूज़ होना चाहिए। सो इट कैन लीड टू अ क्रिएशन ऑफ 1 मिलियन टन पर एनम टाइप ऑफ मार्केट। तो यहाँ पे कितने लोग नए एंटर करते हैं, दैट इज़ द की रिस्क। तो यहाँ पे क्या क्या की रिस्क है, कितने लोग न्यू एंटर करते हैं, कितने लोग ये मशीन सेटअप कर सकते हैं, या थर्डली और क्या रिस्क हो सकता है कि अभी तो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम लोग हैं, बट अगर बहुत हाई मार्जिन बनने लगे तो मोर पीपल विल ट्राई टू एंटर दिस इंडस्ट्री। तो दीज आर कपल ऑफ द रिस्क विच आर देयर इन द प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड ऑफ द इंडस्ट्री। सो व्हाट वी लर्न, तो अभी हम देखते हैं, तो हमने अभी तक बैटरी रिसाइकलिंग की बात कर ली, फिर सेकेंडली हमने जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी बात करी, एंड हमने प्लास्टिक रिसाइकलिंग की बात करी, एंड हमने देखा इंडिया के अंदर किस किस टाइप के प्लेयर्स हैं। गणेशा इकोस्फेयर प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर है, वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट है, टायर वाटर की हमने अभी डिस्कशन नहीं करा क्योंकि हम वाटर ट्रीटमेंट का एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आयन एक्सचेंज और वाटेक वाबाग है, एंड टायर के अंदर टिन्ना रबर और GRP एंड आई थिंक GRP का मल्टीपल बहुत हाई लगता है इस टाइम पे, एंड ई वेस्ट के अंदर इको रिको करके एक कंपनी है, एंड कार्बन ब्लैक के रिसाइकलिंग के अंदर देयर इज अ कंपनी दैट इज़ बाय द नेम ऑफ हाई ग्रीन कार्बन। तो दोनों SME कंपनीज हैं, दोनों इस टाइम पे बहुत एक्सपेंशन कर रही हैं बिकॉज ई वेस्ट के अंदर जो जब से ERP नॉर्म्स आए हैं तो इको रिको को भी बहुत ज़्यादा टेलविंड मिल रखी है। सो दोज आर कंपनीज दैट यू कैन स्टडी इंडिपेंडेंटली। सो इन अ कंक्लूजन, व्हाट ऑल डिड वी लर्न इन दिस वीडियो, वी लर्न कि हम डिफरेंट रिसाइकलिंग मार्केट्स को कैसे असेस कर सकते हैं। हमने देखा कि इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स कौन से अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर कैसे रिसाइकलिंग हो रही है, राइट, कौन सी इंडस्ट्री में कौन की प्लेयर है, एंड फाइनली वी लर्न कि जब प्लास्टिक की बात करते हैं या बैटरी की बात करते हैं या फिर हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कौन कौन से की प्लेयर्स हैं, उनका हमने एक ब्रीफ एनालिसिस करा, एंड हमने ये देखा कि बाकी ई वेस्ट के अंदर भी इंडिया के अंदर प्लेयर्स हैं, टायर के अंदर भी इंडिया के अंदर प्लेयर्स हैं, एंड कार्बन ब्लैक की रिसाइकलिंग के अंदर भी इंडिया के अंदर प्लेयर्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कौन सी सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट लगा इस वीडियो में, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल मेक श्योर डैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC। जय हिंद।